ओम शांति, ओम शांति कहा जाता है। निर्माणता ही महानता है। मनुष्य जितना निर्माण बनता है, नम्र बनता है, उतना ही वो महान बनता है, महिमा योग्य बनता है। वैसे भी किसके पास ज्ञान बहुत हो, लेकिन अगर उसमें अभिमान आ जाए उस ज्ञान का, तो उसका महत्व कम हो जाता है। अंग्रेजी में एजुकेशन में हम कहते हैं, लर्निंग टू नो इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट इज लर्निंग टू बी, बनना। जानना कोई बड़ी बात नहीं है, पर बनना। तो वही आज बाबा ने कहा है, जितने तुम ज्ञानी तो आत्मा बनते हो, जितने ऊंचे चढ़ते हो उतने ही तुम नम्र बनो। अगर नम्र नहीं बनेंगे तो महिमा योग्य नहीं बनेंगे। केवल ज्ञान सुना दिया तो बाबा तो कहते वो तो पंडिताई है। तो इसीलिए पंडिताई तो नहीं चाहिए ना हमें, हमें तो महान बनना है। तो महानता कैसे आएगी? जब निर्माणता आएगी। और इन सब का आधार है पवित्रता। पवित्रता से ही महान बनते हैं, पवित्रता से ही निर्माण भी बनते हैं, और पवित्रता से ही ऊंचे से ऊंचे पुरुषोत्तम भी बनते हैं। तो आज बाबा की मुख्य पॉइंट्स यही है। बाकी तो ज्ञान के कई राज है जो हम आज की मुरली से सुनेंगे। आज 16/4/2024 है। मीठे बच्चे, तुम्हें सतो प्रधान बनना है तो बाप को प्यार से याद करो। पारसनाथ शिव बाबा तुम्हें पारसपुरी का मालिक बनाने आए हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें सतो प्रधान बनना है तो बाप को प्यार से याद करो। पारसनाथ शिव बाबा तुम्हें पारसपुरी का मालिक बनाने आए हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक बात की धारणा से ही महिमा योग्य बन जाएंगे? अभी तो हम पूजा योग्य तो नहीं है, हम तो ब्राह्मण जीवन में महिमा योग्य जरूर बन सकते हैं। पूजा योग्य तो तब बनेंगे जब सत्युग में देवता बनेंगे, तो हमारा पूज्य स्वरूप पूजा जाएगा। लेकिन इस समय ब्राह्मण महिमा योग्य बनते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, तुम बच्चे किस एक बात की धारणा से ही महिमा योग्य बन जाएंगे? उत्तर, बहुत बहुत निर्माण चित बनो, नम्र चित बनो, बहुत बहुत। हाँ, इसका मिसाल हम क्या देते हैं? फलों से लदा हुआ पेड़, जितना फलदायक फलदार होता है पेड़, उतना ही झुकता है। अकड़ के चलेंगे तो उसको कौन पूछेगा? खजूर का पेड़ इतना ऊंचा ऊंचा है, लेकिन कौन चढ़े? तो इसीलिए बाबा कहते हैं, नम्रता जरूरी है। बहुत बहुत निर्माण चित बनो, किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। बहुत मीठा बनना है। अहंकार होगा तो मीठा थोड़ी बन सकेंगे, कड़वे ही होंगे ना। अहंकार होगा क्या क्या बोल देंगे, जो आया सो बोला, सो समझ कर तो नहीं बोलेंगे कि उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो क्या सोचेगा, क्या उसकी स्थिति बनेगी, वो तो कुछ नहीं सोचते, अपना ही सोचते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बहुत मीठा बनना है। अहंकार आया तो कुछ न कुछ कड़वा बोल दिया तो दुश्मन बना देते हैं, वो दुश्मन बन जाएगा आपका, क्योंकि वो आपने कितना भी उसके लिए किया पर कुछ ऐसा बोल दिया तो वो जो आपने एहसान किया वो तो भूल जाएगा। बहुत एहसान किया आपने उन पर, लेकिन जो बोल दिया वो बोल ही उसको सारा जीवन भर याद रहेंगे, इसने मुझे ऐसा बोला। तो देखो बाबा कहते हैं अहंकार आया तो वो दुश्मन बन जाते हैं जिनके प्रति अहंकार दिखाया। ऊंच अथवा नीच पवित्रता की बात पर बनते हैं, जितनी ही निर्माणता उतनी पवित्रता। तो ऊंच अथवा नीच पवित्रता की बात पर बनते हैं। जब पवित्र है तो मान है, अगर कोई बहुत ज्ञानी हो बहुत अच्छा है लेकिन कोई ऐसा कार्य किया जो कानून के विरुद्ध है या नियमों के विरुद्ध है तो उसका सब ज्ञान पानी में खत्म हो गया ना, पानी पड़ गया उस पर। तो बाबा कहे पवित्रता की बात पर बनते हैं ऊंच या नीच। जब पवित्र है तो मान है, अपवित्र है तो सबको माथा टेकते हैं। और उसे सबसे बड़ा उदाहरण है अपवित्र है तो माथा टेकते हैं और पवित्र है तो मान है, हाँ, कुमारी का। अभी नवरात्रि चल रही है, कुमारियों की कितनी पूजा करते हैं। अब वही कुमारी शादी करती है तो उसको झुकना पड़ता है, झुको सास के आगे, झुको ससुर के आगे, झुको जेठ के आगे, झुको, तो झुकना ही पड़ता है सबके आगे। और पवित्रता है, कुमारी है तो उसकी पूजा होती है। तो बाबा कहे जब पवित्र है तो मान है, अपवित्र है तो सबको माथा टेकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप भी समझते हैं कि हम इन बच्चों को समझाते हैं। ये भी बच्चों को समझाया गया है कि भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम से अनेका अनेक चित्र बना दिए हैं। आज भक्ति मार्ग की कई बातें बाबा ने सुनाई है। तो बाबा कहे ये भी बच्चों को समझाया गया है कि भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम से अनेका अनेक चित्र बना देते हैं। जैसे कि नेपाल में पारसनाथ को मानते हैं, उनका बहुत बड़ा मंदिर है परंतु है कुछ भी नहीं, चार दरवाजे हैं, चार मूर्तियां हैं, चौथे में श्री कृष्ण को रखा है, होगा नेपाल में, चौथे में श्री कृष्ण को रखा है। अब शायद कुछ बदली कर दिया है क्योंकि बाबा तो नेपाल जाते थे ना, नेपाल के जो राणा परिवार वो उस समय राजा ही थे तो उनका साथ उनका बिजनेस था, तो बाबा नेपाल में बहुत जाते थे। तो बाबा कहते हैं अब शायद कुछ बदली कर दिया हो। अब पारसनाथ तो जरूर शिव बाबा को ही कहेंगे, मनुष्यों को पारस बुद्धि भी वही बनाते हैं शिव बाबा। तो पहले पहले उनको ये समझाना है कि ऊंच से ऊंच है भगवान, पीछे है सारी दुनिया। कोई कितना भी महान हो लेकिन भगवान से तो मान नहीं हो सकता है ना। तो ऊंच है भगवान, पीछे है सारी दुनिया। सूक्ष्म वतन की सृष्टि तो है नहीं, पीछे होते हैं। सूक्ष्म वतन की सृष्टि है नहीं, ऊंचे तो ऊंचा भगवान है। फिर इस सृष्टि पर आओ तो पीछे होते हैं लक्ष्मी नारायण या विष्णु, वो ऊंचे थे ऊंचे। वास्तव में विष्णु का मंदिर भी रॉन्ग है। क्यों बाबा कहते विष्णु का मंदिर रॉन्ग है? विष्णु चतुर्भुज। अब चार भुजाओं वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं। बाप समझाते हैं ये लक्ष्मी नारायण है, विष्णु माना लक्ष्मी नारायण, जिनको इकट्ठा विष्णु के रूप में दिखाया है। लक्ष्मी नारायण तो दोनों अलग अलग है। जब लक्ष्मी नारायण दिखाएंगे अलग अलग तो दो दो भुजा वाले दिखाएंगे, जब केवल विष्णु दिखाएंगे तो चार भुजा वाला दिखाएंगे। तो लक्ष्मी नारायण तो दोनों अलग अलग है। सूक्ष्म वतन में विष्णु को चार भुजाएं दे दी है, अर्थात चार भुजा क्यों, अर्थात दोनों को मिलाकर चतुर्भुज कर दिया है। बाकी ऐसा कोई होता नहीं है, कोई भी चार भुजा वाला व्यक्ति तो कभी होता नहीं। मंदिर में जो चतुर्भुज दिखाते हैं वो है सूक्ष्म वतन का। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार जब होता है तो वहां विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा बाबा को पहले तो विष्णु का ही साक्षात्कार हुआ, तो सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार हुआ। तो बाबा कहे मंदिर में जो चतुर्भुज दिखाते हैं वो है सूक्ष्म वतन का। चतुर्भुज को शंख चक्र गदा पद्म आदि देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ऐसे नहीं कि ऐसे विष्णु खड़ा होगा और चार ये अलंकार लेकर खड़ा होगा। तो बाबा कहते ऐसा कुछ है नहीं। चक्र भी तुम बच्चों को है, सारे अलंकार तुम बच्चों के हैं, चक्र भी तुम बच्चों को है। नेपाल में विष्णु का बड़ा चित्र क्षीर सागर में दिखाते हैं। वहां पर काठमांडू में वहां पशुपतिनाथ का जो शिव का मंदिर, उसके थोड़ी दूरी पर एक है बूढ़ा नीलकंठ। बूढ़ा नीलकंठ है तो विष्णु चतुर्भुज का ही चित्र, लेकिन उसको बूढ़ा नीलकंठ कहते हैं। तो एक जैसे टैंक बनी हुई है और उसमें विष्णु जी लेटे हुए हैं, चार भुजाधारी शंख चक्र पद्म गदाधारी विष्णु लेटे हुए हैं। तो देखने जाते हैं लोग, तो जब खास दिन आता है तो उसमें थोड़ा दूध डाल देते हैं, तो बताते हैं कि विष्णु जी क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं नेपाल में विष्णु का बड़ा चित्र क्षीर सागर में दिखाते हैं। पूजा के दिनों में थोड़ा दूध डाल देते हैं। बाप एक एक बात अच्छी तरह समझाते हैं, ऐसे कोई भी विष्णु का अर्थ समझा न सके। जैसे बाबा समझाते हैं कि विष्णु लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है, ऐसे कोई भी विष्णु का अर्थ समझा न सके, जानते ही नहीं। ये तो भगवान खुद समझाते हैं। भगवान कहा जाता है शिव बाबा को, है तो एक ही शिव बाबा, है तो एक ही, परंतु भक्ति मार्ग वालों ने नाम अनेक रख दिए हैं। तुम अभी अनेक नाम नहीं लेंगे, तुम अभी अनेक नाम थोड़ी लेंगे। शिव के कितने नाम रख दिए, पर हम तो एक ही नाम लेंगे शिव बाबा। तुम अभी अनेक नाम नहीं लेंगे, भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाते हैं, तुमने भी खाए, बहुत खाए ना भक्ति मार्ग में धक्के। अभी अगर तो मंदिर आदि देखेंगे तो उस पर समझाएंगे कि ऊंचते ऊंच है भगवान, सुप्रीम सोल, निराकार परम पिता परमात्मा। आत्मा शरीर द्वारा कहती है हे परम पिता, हाँ ये परम पिता, ये आत्मा ही कहती है शरीर द्वारा। उनकी फिर महिमा भी है परम पिता की, वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। भक्ति मार्ग में एक के अनेक चित्र हैं, ज्ञान मार्ग में तो ज्ञान सागर एक ही है बस। वही पति पावन सर्व के सदगति दाता है। तो तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, ऊंचे से ऊंच परमात्मा है, उनके लिए ही गायन है। क्या गायन है ऊंचे से ऊंच परमात्मा के लिए? गायन है सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात एक बाप को ही याद करो अथवा सिमरण करते रहो तो कलह क्लेश मिटे सब तन के, फिर जीवन मुक्ति पद पाओ। सब तन के मन के कलह क्लेश मिट जाएंगे, माना जीवन मुक्ति पद पाओ। ये जीवन मुक्ति है ना, बाप से ये सुख का वर्षा मिलता है। ये लक्ष्मी नारायण क्या है, बाबा के आगे वो चित्र हमेशा हो रहता है ट्रांसलेट का, लक्ष्मी नारायण का। ये जीवन मुक्ति है ना, बाप से ये सुख का वर्षा मिलता है। अकेले ये तो नहीं पाएंगे, अब वो तो विश्व महाराज एंड महारानी है, तो उनकी प्रजा भी तो होंगी, अकेले थोड़ी होंगे, अकेले ये तो नहीं पाएंगे, जरूर राजधानी होगी ना। गोया बाप राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सत्युग में राजा रानी प्रजा सब होते हैं। तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो क्या होगा इस ज्ञान से, तो जाकर बड़े कुल में जन्म लेंगे, सबसे ऊंचा कुल देवी कुल, उसमें जन्म लेंगे, बहुत सुख मिलता है। जब वो स्थापना हो जाती है सुखदाम की सत्यु की, तो छीछी आत्माएं सजाएं खाकर वापस चली जाती है, अपने अपने सेक्शन में जाकर ठहरेगी परमधाम में। इतनी सब आत्माएं आएंगी फिर वृद्धि को पाती रहेंगी, जाएंगी सब एक साथ पर आएंगी अपने अपने समय पर, सब एक साथ नहीं आते हैं। इतनी सब आत्माएं आएंगी फिर वृद्धि को पाती रहेंगी। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि ऊपर से कैसे आते हैं, कैसे आती है आत्माएं, ऐसे तो नहीं दो पत्ते के बदले 10 पत्ते इकट्ठे आना चाहिए, कोई भी पेड़ होता है ऐसे नहीं कि अब पहले 2 पत्ते ही निकलते हैं फिर ऐसे नहीं एक ही साथ 10 पत्ते निकल आएंगे, हरे का नियम होता है कैसे पत्ते निकलते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं 2 पत्ते के बदले 10 पत्ते इकट्ठे आना चाहिए, नहीं कायदे सिर पत्ते निकलते हैं, पेड़ में भी कायदे सिर पत्ते निकलते हैं। अब ये तो बहुत बड़ा झाड़ है, अब यहाँ आत्माएं कैसे आती है सृष्टि पर, दिखाते हैं एक दिन में लाखों की वृद्धि हो जाती है। जब पॉपुलेशन की बात जनगणना की बात आती है ना जनसंख्या की, तो कई कहते हैं कि विश्व में हर सेकंड एक बच्चा पैदा होता है, हर सेकंड, और भारत में तो हर मिनट तो कम से कम एक बच्चा पैदा होता होगा, कितनी वृद्धि हो रही है। तो बाबा कहते हैं अब मरते तो उनकी भेंट में तो बहुत कम होंगे ना, पर जन्मते ज्यादा है, माना आत्माएं परम धाम से आ रही है अभी भी। तो दिखाते एक दिन में लाखों की वृद्धि हो जाती है। तो पहले समझाना है ऊंचते ऊंच है भगवान, पतित पावन दुख हरता सुख करता भी वही है। जो भी पाठधारी दुखी होते हैं उन सबको आकर सुख देते हैं, सबको आकर सुख देते हैं। अभी सब पाठधारी आत्माएं दुखी हो गई है, दुख देने वाला है रावण। मनुष्यों को ये मालूम ही नहीं है कि बाप आए हैं, जो आकर के समझे फिर बाप के पास आए और समझे, उनको पता ही नहीं है कि भगवान आए हुए हैं। बहुत तो समझते समझते फिर थिरक जाते हैं, थिरक जाते माना भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। तो बाबा के पास आए, काफी दिन आए, रोज आए, मुरली सुनी, और अचानक एक दिन वो कहेंगे अभी मैं नहीं आऊंगा, बस थिरक गए, जैसे फिसल गए निकल गए, तो बाहर निकल जाते हैं। जैसे स्नान करते करते पांव फिसल जाता है ना, तो पानी अंदर घुस जाता है। बाबा तो अनुभवी है ना, ये है, ये तो विषय सागर है, कैसे आत्माएं आती है फिर माया के मुरीद हो गए, फिसल गए, चले गए दुनिया में। वहां भी नदी में भी नहाते हैं, तो अगर फिसल गए तो नीचे जाके डूब जाएंगे, अंदर पानी चला जाता है। तो बाबा कहते हैं बाबा तो अनुभवी है ना, ये तो विषय सागर है, बाबा तुमको क्षीर सागर तरफ ले जाते हैं, परंतु माया रूपी ग्राहा, ग्राहा ना मगरमच्छ, माया रूपी ग्राहा अच्छे अच्छे महारथियों को भी हप कर लेता है। जीते जी बाप की गोद से मर कर रावण की गोद में चले जाते हैं, अर्थात मर पड़ते हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है ऊंचे ते ऊंच बाप, फिर रचना रचते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी सूक्ष्म वतन की तो है नहीं, भल तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, साक्षात्कार करते हो, वहां चतुर्भुज देखते हो, चित्रों में तो है ना, तो वो बुद्धि में बैठा हुआ है, विष्णु माना ही चार भुजाधारी शंख चक्र गदा पद्मधारी, तो ये चित्रों में देखा है तो विष्णु का साक्षात्कार हो जाता है। तो वो उस बुद्धि में बैठा हुआ है तो जरूर साक्षात्कार होगा, परंतु ऐसी कोई चीज है नहीं कि कोई चार भुजा वाला हो। ये भक्ति मार्ग के चित्र है, अभी तक भक्ति मार्ग चल रहा है, भक्ति मार्ग पूरा होगा तो फिर ये चित्र रहेंगे नहीं, ये चित्र रहेंगे नहीं। भक्ति मार्ग पूरा होगा तो स्वर्ग में ये सब बातें भूल जाएंगे। अब बुद्धि में है कि ये लक्ष्मी नारायण दो रूप हैं चतुर्भुज के, लक्ष्मी नारायण की पूजा सो चतुर्भुज की पूजा। बात एक ही है, अगर विष्णु की पूजा करते हैं माना वास्तव में लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर या चतुर्भुज का मंदिर बात एक ही है, इन दोनों का ज्ञान और किसको भी नहीं है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है, हाँ था जरूर, ऐसे नहीं ऐसे ही है ये चित्र, इनका राज्य है जरूर। विष्णु का राज्य तो नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, भारत में ही था, तब स्वर्ग था सत्ययुग था, पर ऐसे तो नहीं कहेंगे विष्णु का राज्य था। विष्णु तो उस रूप से सृष्टि मंच पर कभी नहीं आएगा चार भुजाधारी, पर हाँ ये साक्षात्कार में देखा जाता है। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य है, विष्णु का राज्य तो नहीं कहेंगे, ये पालना भी करते हैं, सारे विश्व के मालिक हैं तो विश्व की पालना करते हैं। लक्ष्मी नारायण सारे विश्व पर उनका राज्य है, तो राजा महारानी को वैसे भी पालनहार कहते हैं, अपनी प्रजा की पालना करते हैं। लक्ष्मी बहन को जगा दे, तो सारे विश्व के मालिक हैं तो विश्व की पालना करते हैं। शिव भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। राजयोग क्या है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। डिटेल में फिर समझाना पड़े, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ऐसे किसी को कहने से वो समझेगा नहीं, डिटेल में फिर समझाना पड़े। बोलो ये भी है गीता, गीता में साफ शब्दों में लिखा है मुझे याद करो, मुझे याद करो, आत्मा हो, आत्मा का बहुत ज्ञान उसमें है। तो बाबा कहते हैं ये भी है गीता, सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, अब ये तो रॉन्ग है, सबकी ग्लानी कर दी है, इसलिए भारत तमो प्रधान बन पड़ा है। क्यों तमो प्रधान बन पड़ा है? क्योंकि सबकी ग्लानी कर दी है। अब है कलयुगी दुनिया का अंत, इसको कहा जाता है इस दुनिया को तमो प्रधान आयरन एज। जो सतो प्रधान थे उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं, जन्म मरण में तो जरूर आना है ना। जब पूरे 84 जन्म लेते हैं तब फिर बाप को आना पड़ता है पहले नंबर में। पहला नंबर शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं, ब्रह्मा को रचते हैं, तो ब्रह्मा फिर पहला नंबर बन जाते हैं, बन जाता है। एक की बात नहीं है, केवल एक को तो नहीं रचते ना, ब्रह्मा बाबा के साथ कितनों को रचा, ब्रह्मा मुख वंशावली बना। एक की बात नहीं है, इनकी तो सारी राजधानी थी ना, लक्ष्मी नारायण अकेले तो नहीं थे, सारी राजधानी थी ना, तो जरूर होनी चाहिए। बाप सबके लिए कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, तो योग अग्नि से पाप कट जाएंगे। एक अर्जुन को तो नहीं समझाया ना, सब पहले ब्रह्मा को रचा, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, फिर ज्ञान दिया, ब्राह्मण रचे, फिर वो देवता बने। तो बाबा कहते हैं बाप सबके लिए कहते अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, तो योग अग्नि से पाप कट जाएंगे। काम चिता पर बैठ सब सांवरे हो गए, अब सांवरे से गोरा गोरा कौन बनाए, कैसे बनेंगे गोरे, सांवरे से गोरे कैसे बनेंगे, सो तो बाप ही सिखलाते हैं। तो आत्मा की बात ना, शरीर के गोरे होने की बात नहीं है, है तो आत्मा की बात। सो तो बाप सिखलाते हैं, श्री कृष्ण की आत्मा जरूर भिन्न भिन्न नाम रूप लेकर आती होगी, 84 जन्मों में भिन्न भिन्न नाम रूप लेकर आती होगी श्री कृष्ण की आत्मा। जो लक्ष्मी नारायण थे उनको ही 84 जन्मों के बाद फिर वो बनना है, तो उनके बहुत जन्मों के अंत में बाप आकर प्रवेश करते हैं, फिर वो सतो प्रधान विश्व के मालिक बनते हैं। चक्र का ज्ञान बाबा ने पूरा दे दिया। तुम्हारे में पारसनाथ को पूछते हैं, शिव को भी पूछते हैं, कोई नेपाल के बैठे होंगे तो बाबा उनको कहते हैं, तुम्हारे में पारसनाथ को पूछते हैं, शिव को भी पूछते हैं, जरूर उनको शिव ने ही ऐसा पारसनाथ बनाया होगा। लक्ष्मी नारायण को भी पारसनाथ कहेंगे, जरूर उनको शिव ने ही ऐसा पारसनाथ बनाया होगा। टीचर तो चाहिए ना, ऐसा ऊंच पद कैसे पाया, ऐसे पढ़ाई बिना थोड़ी ऊंच पद किसी को मिल सकता है, तो जरूर टीचर चाहिए ना। अब वो है ज्ञान सागर, अब सतो प्रधान पारसनाथ बनना है, तो बाप को बहुत प्यार से याद करो, वही सबके दुख हरने वाला है, बाप तो सुख देने वाला है। ये है कांटों का जंगल, तो बाप आए हैं फूलों का बगीचा बनाने। बाप अपना परिचय देते हैं, क्या देते हैं, मैं इस साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। बाबा अपना परिचय देते हैं, शिव बाबा मैं इस बूढ़े साधारण तन में प्रवेश करता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। तो भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तो ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी थ्योरी, क्योंकि यहाँ सिखाया जाता है, तो जहाँ सिखाते हैं वो तो स्कूल होगा, कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होगी, तो ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी थ्योरी। एम ऑब्जेक्ट है ही, या क्या एम ऑब्जेक्ट है, राजा रानी बनने की, या एम ऑब्जेक्ट ही है, राजयोग माना राजा रानी बनना है, तो राजयोग माना राजा रानी बनने की एम ऑब्जेक्ट है, तो जरूर प्रजा भी बनेगी, केवल राजा रानी थोड़ी बनेंगे, किस पर राज्य करेंगे, तो जरूर प्रजा भी बनेगी। मनुष्य योग योग बहुत करते हैं, निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक हठ योग करते हैं, वो राजयोग सिखला न सके। राजयोग है ही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए, क्योंकि राजा बनना है ना राजयोग से, तो निवृत्ति मार्ग वाले तो सब अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, तो अपनी राजाई भी छोड़ देते हैं। कईयों का मिसाल देते हैं ना, गोपी चंद राजा था, उसने संन्यास कर दिया तो खत्म, हाँ तो राजाई तो खत्म की। तो बाबा कहते हैं अनेक हठ योग सिखाते हैं, वो राजयोग सिखला न सके। बाप का है ही एक प्रकार का योग, एक ही प्रकार का योग है बाबा का, वो है राजयोग। सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस घर जाना है। हाँ, कल भी बाबा ने कितना कहा, वापस घर जाना है, अब पावन बनना है, एक बाप को याद करो, बाकी सबको छोड़ो, सबको छोड़ो, बस एक बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में तुम गाते थे, आप आएंगे तो हम एक संग जोड़ेंगे, तो जरूर उनसे वर्षा मिला था ना, एक संग क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि उस एक से वर्षा मिला था ना। आधा कल्प है स्वर्ग, फिर है नरक, रावण राज्य शुरू होता है। हाँ, ऐसे ऐसे बाबा कहते समझाना है, आधा कल्प है स्वर्ग, आधा कल्प है नरक, जब रावण राज्य शुरू होता है, ऐसे ऐसे समझाना है। अपने को देह नहीं समझो, आत्मा अविनाशी है, आत्मा में ही सारा पाठ मुंडा हुआ है जो तुम बजाते हो, अब शिव बाबा को याद करो, तो बेड़ा पार हो जाएगा। कोई भी बहुत दुखी है तो उसको एक ही राय देनी है, अब शिव बाबा को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उनका कितना मान होता है, अब सुनो मान की बात। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उनका कितना मान होता है, सब माथा झुकाते हैं, पवित्रता की बात पर ही ऊंच नीच बनते हैं। जब पवित्र है तो ऊंचे हैं, अपवित्र बने तो नीचे आ गए। पवित्रता की बात पर ही ऊंच नीच बनते हैं। देवताएं हैं बिल्कुल ऊंच, क्यों बिल्कुल ऊंच, क्योंकि वो पवित्र है। सन्यासी फिर एक जन्म पवित्र बनते हैं, फिर दूसरा जन्म तो विकार से ही लेते हैं। देवताएं होते ही हैं सतयुग में, अब तुम पढ़ते हो, फिर केवल पढ़ते नहीं हो और साथ साथ क्या करते हो, पढ़ाते भी हो। ब्राह्मणों का काम ही है पढ़ना और पढ़ाना, ब्राह्मण वही है जो पढ़ता और पढ़ाता है। अगर पढ़ता ही केवल रहता है पढ़ाता नहीं तो भी ब्राह्मण नहीं, केवल पढ़ाता और पढ़ता खुद नहीं है तो भी ब्राह्मण नहीं, तो दोनों। तो बाबा कहते अब तुम पढ़ते हो फिर पढ़ाते भी हो। कोई पढ़ते हैं लेकिन दूसरों को समझा नहीं सकते, अगर दूसरों को नहीं समझा सकते इसका मतलब क्या है, बाबा कहते हैं जरूर खुद समझा नहीं है। अगर खुद समझा हुआ होता तो दूसरों को जरूर समझा सकता था, या तो खुद समझा नहीं है या तो धारणा नहीं है। तो धारणा नहीं है तो फिर समझाने में अंदर संकोच होगा कि मेरे अंदर धारणा तो है नहीं, मेरे अंदर क्रोध बहुत है, मैं कैसे दूसरे को कहूंगा क्रोध नहीं करो, है ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन दूसरों को समझा नहीं सकते क्योंकि धारणा नहीं होती है। बाबा कहेंगे, हाँ, अगर बाबा को कहते बाबा मैं क्या करूं, मैं दूसरों को समझा नहीं सकता हूं, तो बाबा क्या करेगा, बाबा कहेगा क्यों नहीं समझा सकते हो, हाँ, और बातें करने में होशियार हो, बाकी ज्ञान देने में समझा नहीं सकता हूं, तो और बातें कैसे करते हो, भी तो बोलना होता है ना, तो ज्ञान क्यों नहीं बोल सकते हो। तो बाबा कहते हैं हाँ, तो फिर बाबा क्या कहेगा उनको, बाबा कहेंगे तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो बाप क्या करे, नहीं समझा सकते हो तो मेहनत करो ना समझाने की, बस अगर तुम्हारी तकदीर में नहीं तो बाबा क्या करेंगे, बाबा तो कहेंगे मेहनत करो। तो बाबा कहेंगे तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो बाप क्या करे, बाप यदि सबको आशीर्वाद बैठ करे, अब वो क्या कहेगा, बाबा आप आशीर्वाद करो तो मैं दूसरों को समझा सकूं। अब बाबा बैठकर सबको आशीर्वाद करे तो सब स्कॉलरशिप ले लेवे, अब सब स्कॉलरशिप ले लेवे तो सब राजा बन जाए, तो फिर प्रजा कौन बनेगा। तो इसलिए बाबा कहते अगर बाबा सबको आशीर्वाद बैठ करे तो सब स्कॉलरशिप ले लेवे। अब वो तो भक्ति मार्ग में आशीर्वाद करते हैं, अब क्या क्या भक्ति मार्ग में करते हैं, सन्यासी भी ऐसे करते हैं, वो आशीर्वाद मांगने जाते हैं तो सन्यासी उनके सिर पर हाथ रखेगा, अच्छा आशीर्वाद करते हैं। अब सन्यासी भी ऐसे करते हैं, उनको जाकर कहेंगे सन्यासी को कि मुझे बच्चा हो, अब मुझे बच्चा हो तो आशीर्वाद करो। अब वो सन्यासी आशीर्वाद करेगा तो आपको बच्चा होगा, अच्छा बच्चा होगा, आशीर्वाद किया, अच्छा तुमको बच्चा होगा, अब बच्ची हुई तो अब उसको बच्चा चाहिए, बच्ची नहीं चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए, तो बच्ची हो गई, तो बच्ची हो गई तो क्या कहेंगे, तो कहेगा भाभी, भाभी ऐसा ही होना था। बच्चा हुआ तो वाह वाह कर चरणों पर गिरते रहेंगे, वहां आपकी आशीर्वाद से बच्चा हो गया, और बच्ची हो गई तो कहेंगे भाभी। अच्छा अगर फिर मरा तो रोने पीटने लगेंगे और गुरु को गाली देने लग पड़ेंगे, आपकी आशीर्वाद से हुआ पर मर गया तो फिर गुरु को ही गाली देने लग पड़ेंगे। गुरु कहेगा ये तो भाभी थी, उसका इतना ही पार्ट था, क्या कहेंगे, कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया कि होगा फिर मर जाएगा, ऐसे क्यों नहीं पहले बताया। कोई मरे हुए को जिन, कोई मरे मरे हुए से जिंदा हो जाता है, ये भी भाभी कहेंगे, है, कई ऐसे बताते हैं कि हम बिल्कुल मर गए थे, मुझे चिता पर चढ़ा दिया था, अभी अग्नि शुरू ही करनी थी तो मेरा मैं हिल गया। एक आया था यहाँ शिविर में आया था, वो बता रहा था और थोड़ी थोड़ा सेक लगा उनको, परंतु जब हिलने लगा तो लोगों ने कहा अरे अरे ये तो जिंदा है, क्योंकि उसको कह तो फिर वो जिंदा हुआ, सब लकड़ी निकाली और थोड़ा सेक लग गया। तो कहा पता नहीं मुझे ऐसे लगा कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है तो मैं हिल रहा था और जिंदा हो गया। तो बाबा कहते हैं तो कोई मरे हुए से जिंदा हो जाता है तो ये भी भावी कहेंगे, वो भी ड्रामा में मूंद है। आत्मा कहाँ छिप जाती है, अब वो छिप गई आत्मा तो लगा भाई शरीर खत्म, परंतु फिर वो आत्मा अपनी जगह पर आ गई होगी, जैसे कोई खिसक जाती है ना, नाभि खिसक जाती कुछ तो फिर वापस आ गई। आत्मा कहाँ छिप जाती है, डॉक्टर लोग भी समझते ये मर पड़ा है फिर जिंदा हो जाता है, चिता पर चढ़े हुए भी उठ पड़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उठ पड़ते हैं। कोई एक ने किसको माना तो उनके पीछे ढेर पड़ जाते हैं, हाँ मान जाते हैं, वो उसने कहा ये जिंदा हो जाएगा और सचमुच जिंदा हो गया तो फिर उसको कितना मानने लगते कि देखो इसने जिंदा किया। कोई एक ने किसको माना तो उनके पीछे ढेर पड़ जाते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत, अभी सारी धारणा की बात, तुम बच्चों को तो बहुत निर्माण चित होकर चलना है, अहंकार जरा भी न रहे। आजकल किसको जरा भी अहंकार दिखाया तो दुश्मनी बढ़ी, दुश्मनी बढ़ी, अहंकार दिखाया, बहुत मीठा होकर चलना है। नेपाल में भी आवाज निकलेगा, अब ये साकार बाबा के महावाक्य बाबा के अव्यक्त होने से पहले के हैं, तो उस समय नेपाल में कोई सेंटर नहीं था, पर बाबा नेपाल को बहुत याद करते थे और राज बच्ची बाबा राज बहन जो नेपाल में है उनको बाबा ने कहा था बच्ची आप नेपाल जाओ, वो तो पंजाब की अमृतसर की या पंजाब की है, तो बाबा ने उनको कहा था, लेकिन उस समय तो नहीं गई, परंतु फिर बाबा ने दादी जी ने उनको नेपाल भेजा, 70s में नेपाल भेजा, वो पटना में रहती थी तो वहां से भेजा। फिर उसने फिर वो जब मधुबन आई तो उस समय बहुत बड़ी एग्जीबिशन रखी थी फिर नेपाल काठमांडू में, और उस समय हिप्पी एज था, हिप्पी लोग बहुत विदेश के आते थे ना, बहुत ड्रग्स बहुत मिलते थे उस समय, इतने ड्रग्स वो हिप्पी लोग अंग्रेज लोग कैसे कैसे बाल बनाते उस समय हिप्पीज थे। तो 73 में वहां बहुत बड़ा मेला रखा था, तो दादी जी को नेपाल की राजबहन ने कहा बाबा अब ये हम मेला रख रहे हैं, हमको भाई बहने भेजो और खास इंग्लिश हैंड भेजो, इंग्लिश हैंड। तो उस समय दादी जी ने मुझे, मैं आई थी बेंगलोर से आई थी या पता नहीं कहाँ से आई थी, तो दादी ने मुझे नेपाल भेजा, तो नेपाल भेजा और एकदम नेपाल में 71 की ये बात है शायद, नेपाल भेजा, इतने फॉरेनर्स आए थे वहाँ। फिर तो मुझे तो दादी जी ने वहीं रख दिया नेपाल में, एक साल मैं काठमांडू में रही। तो देखो बाबा नेपाल को बहुत याद करते हैं, अभी तो देखो नेपाल में कितने सेवा केंद्र हैं, कितने भाई बहने समर्पित हैं नेपाल के, वो हाथ उठाओ नेपाल वाले जो समर्पित है, बैठे हैं कोई किचन में है, कई जगह पहरे पर है, नीचे शांतिवन में है, ज्ञान सरोवर में है, समर्पित भाई बहने नेपाल के। तो बाबा कहते हैं हाँ नेपाल में भी आवाज निकलेगा, अभी तुम बच्चों की महिमा का समय है नहीं, नहीं तो उनके अखाड़े उड़ जाए, अगर ये सन्यासी आ जाए, बड़े बड़े जग जाए और सभा में बैठ सुनाए तो उनके पिछारी ढेर आ जाए। कोई भी एमपी बैठ तुम्हारी महिमा करे कि भारत का राजयोग इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सिवाय कोई सिखला न सके, ऐसा अभी तक कोई निकला नहीं है, अभी निकल रहे हैं कई ऐसे वीआईपीज आते हैं भाषण करते, तो कहते ब्रह्मा कुमारियों का जो ज्ञान है वो कितना ऊंचा ज्ञान है, सबका जीवन बनाते, बहुत कुछ कहते अभी। तो अभी ऐसा कोई निकला नहीं है। बच्चों को बहुत होशियार चमत्कारी बनना है, फलाने फलाने भाषण कैसे करते हैं सीखना चाहिए। सर्विस करने की युक्ति बाप सिखलाते हैं, बाबा ने मुरली जो चलाई एक्यूरेट कल्प कल्प ऐसे ही चलाई होगी। ड्रामा में नींद है, प्रश्न नहीं उठ सकता है ऐसा क्यों। ड्रामा अनुसार जो समझाना था वो समझाया, समझाता रहता हूँ, बाबा समझाते रहते हैं, बाकी लोग तो अथाह प्रश्न करेंगे। बोलो पहले मन मना भव हो जाओ, फालतू प्रश्न भी बहुत करते हैं, तो बाबा कहते हैं उनको कहो पहले मन मना भव हो जाओ, बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, बाप को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सर्विस की युक्ति सीखकर बहुत बहुत होशियार और चमत्कारी बनना है। सर्विस की युक्ति सीखकर बहुत बहुत होशियार और चमत्कारी बनना है। धारणा कर फिर दूसरों को करानी है। पढ़ाई से अपनी तकदीर आपे ही बनानी है। दूसरा, किसी भी बात में जरा भी अहंकार नहीं दिखाना है। बहुत बहुत मीठा और निर्माण चित बनना है। माया रूपी ग्रह से अपनी संभाल करनी है। वरदान, बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पास विद ऑनर भव। बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पास विद ऑनर भव। वो बीती आपकी यादगार स्वरूप बन जाए, ऐसी बीती बनानी है। माना पास्ट जीवन को ऐसा बनाना है। पास्ट इज पास्ट, अब चलो कुछ हुआ भी तो पास्ट इज पास्ट, ये होना ही है। समय और दृश्य सब पास हो जाएंगे, लेकिन पास विद ऑनर बनकर हर संकल्प व समय को पास करो। अर्थात बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती करो जो बीती को स्मृति में लाते ही वाह वाह के बोल दिल से निकले। हमारी जो पास्ट लाइफ है वो इतनी श्रेष्ठ हो जो हमको देखते ही कहे वाह वाह इन्होंने तो अपना जीवन बना लिया, तो वाह वाह के बोल दिल से निकले। अन्य आत्माएं आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े, आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए तो कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहेंगे, आपकी महिमा गाते रहेंगे। स्लोगन, स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ तो विश्व सेवा में सकाश मिलेगी। स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ तो विश्व सेवा में सकाश मिलेगी। आज का व्यक्ति इशारा, आज 16 तारीख है। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव संस्कार वाले। ब्राह्मण किसको कहेंगे? सबके दिल पसंद स्वभाव संस्कार वाले। मेजॉरिटी 95% के दिल पसंद जरूर हो, 5% तो आपको स्वीकार न भी करे हो सकता है, लेकिन 95% के दिल पसंद जरूर हो। दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट, सरल स्वभाव, लाइट हल्के सबसे। हर बोल कर्म और वृत्ति से वो हल्कापन अनुभव हो। आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करे, इसके लिए सहन शक्ति धारण करो। भल कोई किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को भी सहयोग दो। कोई का हद का संस्कार प्रभावित न करे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। कल से आप सभी सुन रहे होंगे हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल के बख्शी भाई, जो बहुत पुराने भाई, तो उनके बारे में आपको बताया। कल उन्होंने शरीर छोड़ा। ग्लोबल हॉस्पिटल के बीके बख्शी भाई जी ने कल 15 तारीख को प्रातः 8:40 को पुराना देह त्याग बाप दादा की गोद ली। वे 89 वर्ष के थे और कुछ समय से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। डायलिसिस पर ही थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। वे 1995 से ग्लोबल हॉस्पिटल में समर्पित रूप से हड्डी रोग विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे थे। कहीं भी हड्डी टूटी हो तो जॉइंट वो करते थे और प्लास्टर चढ़ाते थे, इनकी बहुत बड़ी सेवा थी। तो हड्डी रोग विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान 1972 में बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से प्राप्त किया था। आज शाम 4 उनके पार्थिव देह को पांडव भवन चार धाम की यात्रा के लिए लाया जाएगा, क्योंकि उनके रिश्तेदार भी है हिमाचल प्रदेश में, वो भी आज दिन तक पहुंच जाएंगे जो है, और फिर शाम को 4 उनके पार्थिव देह को पांडव भवन में लाया जाएगा और चार धाम की यात्रा कराई जाएगी। और सायंकाल 7 हिस्ट्री हॉल में उनके निमित्त भोग लगेगा। तो 4 उनके पार्थिव देह को पांडव भवन में लाएंगे बख्शी भाई के, और 7 फिर भोग लगेगा। ओम शांति। अभी हम उस आत्मा को योगदान देंगे बाबा की याद में।